ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतु सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 20 श्लोक संख्या 24 से 33 तक है, है ना? और लगभग 10 श्लोक हैं, 24 से 33 10 हो गए ना, 9 हो गए शायद, मेरी गिनती 10 हो गए, 9 हो गए, हाँ 10 श्लोक हो गया। तो इन श्लोकों पर थोड़ा दोहराएंगे श्लोकों को। तो पहले हम 24 से लेकर के और 32 तक पढ़ लेते हैं, 33 है ना, 33वां श्लोक को फिर सब लोग बोलेंगे, पहले हमको पढ़ लेते हैं, ऐसी ठीक है ना, या पहले पढ़ना ठीक है क्या करें? ठीक है। एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परत उपवेशितः साक दीपो द्वान्त्रसर लक्ष्य योजनायामः समानेन च दध मंडोदेन परितो यस्मन् साको नाम मरीरोह स्वक्षेत्र व्यपदेशको अस्य यस्यः महासुरभि गंध तम दीपम अनुवास्यति। इसका अर्थ है क्षीर समुद्र से बाहर शाक द्वीप है जिसकी चौड़ाई 32 लाख योजन है, यानी 2,56,00,000 मील है। जिस प्रकार कौच द्वीप अपने ही क्षीर सागर से घिरा है, उसी प्रकार साक द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। साक द्वीप में एक विशाल साक वृक्ष है जिससे इस द्वीप का नाम यह पड़ा है। यह वृक्ष अत्यंत सुगंधित है, इससे सारा द्वीप महकता रहता है। तस्यापि प्रेव्रत एव अधिपति नामना मेधातिथि शो अपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्व आत्मजान पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानी चित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञान निधाप्य अधिपति स्वयं भगवंत अनंत भगवती अनंत आवेशतम अति तपोवनम प्रवेश। इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत के ही पुत्र मेधादिथि थे, उन्होंने ही अपने द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रखा और उन्हें इन द्वीपों का राजा बना दिया। उनके इन पुत्रों के नाम हैं पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानी चित्ररेफ बहुरूप तथा विश्वधर इस द्वीप को विभाजित करके अपने पुत्रों को उनका राजा बनाकर मेधापति स्वयं विरक्त हो गए और उन्होंने अपने मन को श्री भगवान के चरणार बिंदों में लगाने के उद्देश्य से ध्यान योग्य एक तपोवन में प्रवेश किया। एतेषां वर्ष मर्यादा गिरयो नद्यश्च सप्त सप्तेव ईशान उर्श्रृंगो बलभद्र सत्केसर सहस्रस्रोतो देवपालो महानसिते अनघा आयुर्दा उभय स्पृष्टि अपराजिता पंचपदी सहस्रसुति निज धृतीर्ते। इन दीपों में भी सात मर्यादा पर्वत तथा सात ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान उर्श्रृंग बलभद्र सत्केसर सहस्रस्रोत देवपाल तथा महानस हैं तथा नदियां अनघा आयुर्दा उभय स्पृष्टि अपराजिता पंचपदी सहस्रसुति तथा निधृति हैं। तदवर्ष पुरुषा ऋतव्रत सत्य व्रत दान व्रत अनुव्रत नामानो भवन्तम् बायात्मकम् प्राणायाम विधूत रजह तमसह परम समाधिना यजन्ते। उन दीपों के वासी भी ऋतव्रत सत्य व्रत दान व्रत तथा अनुव्रत इन चार वर्णों में विभक्त हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के समान हैं। वे प्राणायाम तथा योग साधते हैं और समाधि द्वारा वायु रूप में परमेश्वर भगवान की उपासना करते हैं। अंतः प्रविश्य भूतानी यो विवर्ति आत्मकेतु ही अंतर्यामी स्वर साक्षात पातु नो यद्वसे स्फुटम। शाकदीप के निवासी वायु रूप में श्री भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। परम पुरुष देह के भीतर परमात्मा रूप में स्थित आप विभिन्न वायुओं तथा वायु यथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा समस्त जीवात्माओं को पालन करने वाले हैं। हे ईश्वर हे परमात्मा हे विराट जगत के नियामक आप सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करें। तत्पर योगी जन प्राणायाम नामक योग क्रिया के बल से शरीर के भीतर वायु को रोककर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार योगी समाधि दशा को प्राप्त होते हैं और अपने हृदय प्रदेश में श्री भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। अपने हृदय प्रदेश में श्री भगवान को अंतर्यामी रूप में देखकर उनमें तल्लीन रहने के लिए समाधि की अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है। एवं एव तद मंडोत परत पुष्कर दीप ततो दुगणायाम समन्तत उत्कल्पितः समानेन स्वाद उदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मन् बृहत् पुष्करम् ज्वलन शिखा अमल कनक पत्रायुतायुतम् भगवतः कमलायसनस्याधनस्यनम् परिकल्पितम्। दधी के समुद्र से बाहर पुष्कर नाम का एक अन्य दीप है जो इस समुद्र से दुगनी चौड़ाई वाला अर्थात 64 लाख योजन यानी 5,22,00,000 मील है। यह दीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मधुर जल के सागर से घिरा हुआ है। पुष्कर दीप में अग्नि की ज्वालाओं के समान दीप्यमान 10 करोड़ स्वर्णिम पंखुड़ियों वाला विशाल कमल का पुष्प है जो सर्वशक्तिमान तथा इसी कारण कभी कभी भगवान कहलाने वाले ब्रह्मा का आसन माना जाता है। तद द्वीप मध्य मानसोत्तर नामकेन एव अर्वाचीन पराचीन वर्ष वर्षयो मर्यादा अचलो अयुतयोजनो छायायामो यत्र तु चत स्रसो दिक्षो चत्वारी पुराणी लोकपालानाम इंद्र आदिनाम यदुपरिष्टात सूर्य रथस्य मेरुम परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रम देवानाम महोरात्राभ्यम परभ्रमति। उस दीव के बीचों बीच भीतरी तथा बाहरी ओर की सीमा बचाने वाला मानसोत्तर नाम का एक पर्वत है। यह 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा और इतना ही चौड़ा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की पुरियाएं हैं। सूर्यदेव अपने रथ में आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर संवत्सर नामक परिधि में, जो मेरु पर्वत का चक्कर लगाती है, यात्रा करते हैं। उत्तर दिशा में सूर्य का पथ उत्तरायण और दक्षिण दिशा में दक्षिणायन कहलाता है। देवताओं के लिए एक दिशा में दिन होता है तो दूसरी दिशा में रात्रि। तात्पर्य, सूर्य की गति की पुष्टि ब्रह्म संहिता 5 वामन से होती है। यस्याज्ञया भ्रमति संभ्रत काल चक्र। सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और 6 मास तक दक्षिण दिशा में चक्कर लगाता है। स्वर्गलोक के देवताओं के दिन और रात्रि की यही अवधियां हैं। तद्वीप अस्याप्य अधिपति ही प्रेवर्तो बीतेहोत्रो नामय तस्यात्मजौ रमणक धात किना मानव वर्ष वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्ववत भगवत कर्मशील एवास्ते। इस दीव का अधिपति महाराज प्रियव्रत का पुत्र वीतहोत्र था, जिसके रमणक तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। उसने इन पुत्रों दोनों पुत्रों को इस दीप के दोनों छोर के छोर दे दिए और स्वयं अपने अग्रज मेधातिथि के समान शिव भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगा। तद वर्ष पुरुषा भगवंतम ब्रह्म रूपणम सकर्म सकर्म किरण कर्मणा राधयंती इदम चोदाहरंती। इस दीप के वासी अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में श्री भगवान की आराधना करते हैं। वे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। 33वां है, यत तत्कर्ममयं लिंगम ब्रह्म लिंगम जनो अर्चेत एकांतम अद्वयम शांतम तस्मै भगवते नमिते। यत जो, तत वह, कर्मयम वैदिक कृत्यों के द्वारा प्राप्य, लिंगम स्वरूप को, ब्रह्मलिंगम जिससे परब्रह्म जाने जाते हैं, जनः व्यक्ति अर्चयेत अर्चना करनी चाहिए, एकांतम एक परम ब्रह्म में पूर्ण आस्था रखने वाला, अद्वयम अभिन्न शांतम शांत, तस्मै उन भगवते सर्वशक्तिमान को नमः नमस्कार है। इति इस प्रकार। उसका अनुवाद और तात्पर्य श्री गोपाल द्वारा, जगत को श्री गोपाल देखी। भगवान ब्रह्मा कर्ममय कहलाते हैं क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है और उन्हीं से वैदिक अनुष्ठान स्तुतियां प्रकट होती हैं। वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न है। फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से न करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए पर ब्रह्म को ही परम आराध्य माने। अतः हम भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में आगत कर्म मयम शब्द महत्वपूर्ण है। वेदों का वचन है, सुधर्म निष्ठ सत्जन्म भी पुमान विरंचताम इति। जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के नियम का कठोरता से पालन करता है उसे ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। यद्यपि ब्रह्मा जी अत्यंत शक्तिमान है किंतु वे कभी भी अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न नहीं मानते, क्योंकि उन्हें यह ज्ञाते हैं कि ईश्वर के शाश्वत दास हैं। क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर अभिन्न रूप से भगवान तथा दास एक हैं, इसलिए ब्रह्मा को यह भगवान कहा गया है। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, किंतु यदि कोई भक्त परम आस्था से उनकी सेवा करता है तो वैदिक साहित्य का उसे ज्ञान हो जाता है, इसलिए ब्रह्मा को ब्रह्मलिंग कहा जाता है, जिससे यह बोध होता है कि उनका संपूर्ण स्वरूप वैदिक ज्ञान में है। तो यहां पर इस पांचवें स्कंध के अध्याय 20 में ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण कहा गया है। जो इसका जो विभाजन हुआ है दीपों का, पृथ्वी का, महाराज प्रियव्रत ने किया, महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी के साथ भाग किए अपने रथ से। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, वैसे आग्निग्रह, इद्मजेहु, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्येता, धृष्टपृष्ट, शवन, मेधातिथि, वीथोत्र, कवि, 10 पुत्र थे महाराज प्रियव्रत के। तो प्रियव्रत पहले सन्यासी होना चाहते थे, नारद जी उनको सन्यासी दीक्षा दे रहे थे, परंतु मनु महाराज को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने फिर उनको रोक दिया और कहा कि अभी आप सन्यास मत लो, अभी आपको बहुत कुछ भगवान की सेवा करनी है, सृष्टि में वृद्धि करनी है। तो मनु महाराज के कहने से महाराज प्रियव्रत सन्यास नहीं लिया और उन्होंने विवाह करके 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 पुत्रों में 3 सन्यासी हो गए, महावीर, श्रवण और कवि, ये 3 पुत्र उनके सन्यासी हो गए। 7 पुत्र बचे, तो 7 पुत्रों के लिए महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी के 7 खंड किए अपने रथ के द्वारा। एक द्वीप फिर एक समुद्र, एक द्वीप फिर एक समुद्र, एक द्वीप फिर एक समुद्र, और अपने 7 पुत्रों को उन्होंने विभाजन कर दिया। उनके जो बड़े पुत्र थे आग्निग्रह, वो जम्बूद्वीप के अधिपति हुए, क्योंकि 7 द्वीप जो आप वर्णन सुन रहे हैं, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप और सलमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप जो महाराज प्रियव्रत ने तैयार किए, तो उन द्वीपों का वर्णन आप सुन ही रहे हैं, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप इत्यादि का। तो सभी द्वीपों का अलग अलग उन्होंने, महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को अलग अलग उनका अधिपति बनाया, और जम्बूद्वीप के अधिपति महाराज आग्निग्रह हुए। आग्निग्रह ने अपने 9 पुत्र उत्पन्न किए, तो उन्होंने फिर इस जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए। इसके 9 खंड किए, जो 9 खंड किए वो नाभि पुरुष, किम पुरुष, हरिवर्ष पुरुष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्य, कुरु, भद्रास और केतुमाल, ये 9 वर्ष कहलाए। जो अजनाभ वर्ष था नाभि, इसके आग्निग्रह राजा हुए, उन्होंने 9 वर्ष इसके किए, उन्होंने 9 पुत्रों को सौंप दिया। ऐसे ही प्लक्षद्वीप के भी जो महाराज इद्महु उनके अधिपति थे, प्लक्षद्वीप के भी उन्होंने 7 भाग किए, क्योंकि उनके 7 पुत्र थे, और 7 भाग करके अपने 7 पुत्रों को उनका अधिपति बनाकर महाराज इदम जो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जम्बू द्वीप से दोगुना प्रक्ष द्वीप था और प्रक्ष द्वीप से दोगुना सालम द्वीप, सालमली द्वीप, जिसके स्वामी यज्ञबाहु है। तो यज्ञबाहु ने भी उस सालमली द्वीप के साथ भाग किए और अपने सातों पुत्रों को बांट दिया और उनको राजा बना करके वो भी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसके बाद कुश द्वीप का वर्णन हुआ। कुश द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता हुए, उन्होंने भी कुश द्वीप के सात भाग किए, उनके भी सात पुत्र थे। तो सात भाग में विभाजन करके अपने पुत्रों को सौंपकर वो भी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ध्यान देने की बात है, सभी वन में तपस्या के लिए जा रहे हैं। उसके बाद क्रौंच द्वीप, इसके स्वामी धृतपृष्ट हुए, उन्होंने भी इस द्वीप के सात भाग किए और अपने सातों पुत्रों को अधिपति बनाकर वो भी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। फिर शाकद्वीप, शाकद्वीप में मेधातिथि इसके स्वामी हुए, उन्होंने भी इसके सात भाग किए और अपने सातों पुत्रों को बांट दिया। लगभग इनके सात ही पुत्र थे और सबके साथ सात पुत्र सात सात भाग इनके करते थे। पहले जम्मू द्वीप के नौ भाग किए थे क्योंकि उनके नौ पुत्र थे, यानी पांच द्वीपों के सात सात भाग हुए हैं। पहले द्वीप के नौ भाग हुए क्योंकि उनके नौ पुत्र थे अग्निग्र के, और सातवां जो द्वीप है पुष्कर द्वीप, उसके दो ही भाग हुए क्योंकि वीरहोत्र उसके स्वामी हुए, वीतहोत्र और उनके दो पुत्र थे, तो उन्होंने दो भाग किए, दो भागों में उसको बांट दिया और वो भी अपने भाइयों की तरह वो भी वन में चले गए अपने पूर्वजों की तरह। तो यहां जो पुष्कर द्वीप है, अंत में पुष्कर द्वीप का वर्णन किया है, जो भगवान ब्रह्मा कर्मभय कहलाते हैं क्योंकि पुष्कर द्वीप में भगवान ब्रह्मा की आराधना होती है। भी अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से भगवान से अभिन्न है ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं तो एक प्रकार से अभिन्न, फिर भी उनकी उपासना एकांत भाव से न करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए परम ब्रह्म को ही परम आराध्य माने, अतः हम भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। तो यहां हमें इन दीपों के विभाजन से और दीपों के राजाओं से शिक्षा मिलती है कि सभी राजा बड़े बड़े दीपों के राजा होने के बाद भी और आज्ञाकारी पुत्रों के होने के बाद भी वो सब वन को जाते रहे, यानी वानप्रस्थ लेते रहे, है ना। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये वैदिक सभ्यता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा राजा बन जाए, कितना ही धनी कुछ भी क्यों न हो जाए और कितना ही अपना आज्ञाकारी पुत्रों का पिता हो या सुंदर पत्नी आज्ञाकारिणी उसकी पत्नी हो, फिर भी उसे वैदिक सभ्यता के अनुसार घर को त्याग देना चाहिए। तो यहां शील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य बताया है, वो मैंने नवे स्कंद के 19वें अध्याय के 11 श्लोक से लिया है, आप देख सकते हैं घर पर जाकर के, अध्याय स्कंद 9 अध्याय 19 श्लोक 11 और 12, दो का तात्पर्य है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई अपनी पत्नी के स्नेह में आबद्ध होता है तो वह संभोग वासनाओं से लिप्त रहता है। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के स्नेह से आबद्ध हो जाता है, अधिक स्नेह फंस जाता है, तो वह संभोग वासनाओं से लिप्त रहता है और उनको जीत पाना अत्यंत कठिन है। किनको जीत पाना? संभोग वासनाओं को जीत पाना अत्यंत कठिन है, शील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतएव वैदिक सभ्यता के अनुसार, प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से अपने तथा कथित घर को छोड़कर जंगल में जाए, जंगल में चला जाए। और वैसे भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि पंचासो ऊर्ध्वम वनम व्रजेतः, श्री प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि वैसे भी 50 वर्ष के ऊपर जब व्यक्ति अवस्था में आ जाए तो ये अवस्था ऐसी होती है कि उसे घर को छोड़कर वन में जाना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर वो शास्त्रों से कोट भी कर रहे हैं। बोले मनुष्य जीवन ऐसी ही तपस्या के लिए है, केवल घर गृहस्थी में ही रहने के लिए नहीं है, उसकी भी एक अवधि होती है। नायम देहो देवभाजाम लोके कष्टान कामान अरहते बेट भुजाम। ये भगवान ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों से, मेरे पुत्रों ये मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, तो ये मानव जीवन केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं है। खाना पीना मौज मस्ती तो जो विष्टा भोजी सूकर कुकर हैं वो भी खाना पीना मौज मस्ती करते हैं, तो मनुष्य करता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि चार पुरुषार्थ होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सभी में है, मनुष्य में तो कोई नई बात थोड़ी है। परंतु मानव जीवन किस लिए है, बोले तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या के लिए है। उससे क्या होगा, बोले तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध है तस्मात ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। ये मानव जीवन दिव्य तपस्या के लिए है, दिव्य तपस्या करने से हृदय शुद्ध होता है, और जब हृदय शुद्ध होता है तो ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, उसे फिर भगवान श्री हरि की यानी कृष्णमय भावनामय हो जाता है और ब्रह्मानंद कृष्णानंद की उसे प्राप्ति होती है। तहसील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन ऐसी ही तपस्या के लिए है, घर पर संभोग के जीवन को स्वेच्छा से त्याग कर और जंगल जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्यों में लगकर मनुष्य मानव जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और श्री प्रभुपाद जी अगले तात्पर्य में कहते हैं 12वें श्लोक के तात्पर्य में कि यदि कोई अपनी पत्नी के तथा कथित सौंदर्य में फंसा रहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी के तथा कथित सौंदर्य में फंसा रहता है तो उसका गृहस्थ जीवन अंधकूप के तुल्य है। हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम, प्रभुपाद जी कोट करते हैं प्रहलाद जी के श्लोक को, जो प्रहलाद जी ने कहा है कि हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम, यह पूरा श्लोक क्या है, तत्साधु मंडे असुर देह असुर वर देह नाम आय क्या है, सदा समुद्विघ्न धियाम सदग्रहात हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यत हरिम आश्रयत। शिल्पोपा जी ने प्रहलाद जी महाराज के श्लोक को कोट किया है कि यदि कोई अपनी पत्नी के तथा कथित सौंदर्य में आसक्त रहता है तो वह उसका ग्रस्त जीवन अंधकूप के तुल्य है। हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम, तो ऐसे अंधकूप में रहना निश्चित रूप से आत्मघात है। तो यहां प्रभुपाद जी यही कोट करते हैं और यही इसमें जितने भी दीपों का वर्णन हुआ है इन सभी दीपों के राजाओं से, क्योंकि वैदिक सभ्यता के अनुसार ये चले हैं, इन्हीं सभी दीपों के राजाओं ने अपने अपने घर को स्त्री को परिवार को छोड़ करके और जंगल में जाकर के भगवान की शरण लेकर के अपने मानव जीवन को सफल किया है। तो यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है महाराज ययाति का। महाराज ययाति इतनी गृहस्थी में पत्नी में आसक्त थे कि यद्यपि उनके ससुर ने उन्हें शुक्राचार्य ने बुढ़ापा भी दे दिया था, फिर भी उन्होंने गृहस्थी भोगने के लिए स्त्री संग भोगने के लिए अपने पुत्र की आयु को मांग लिया। कौन से पुत्र की, पुरु थे साहब, पुरु की आयु को मांग लिया और 1000 वर्ष तक ऐसा लिखा है भागवत में, 1000 वर्ष तक उन्होंने स्त्री संभोग किया और उसके बाद फिर उन्हें बड़ा एकदम बैराग हुआ, अरे अरे मैं कितना मूर्ख हूं, कितना ज्ञानी हूं कि बताओ, मैं अभी तक गृहस्थी के और इन वासनाओं में फंसा हुआ हूं, इन वासनाओं से कभी इंद्रियों की तृप्ति हो सकती है? उन्हें बैराग हुआ, कभी नहीं हो सकती। जैसे अग्नि में घी डालने से घी की वो और ज्यादा बढ़ती है उसकी लपट, उसी प्रकार इन इंद्रियों की तृप्ति घर गृहस्थी में भोगते भोगते कभी तृप्त होती नहीं और अंत में बस वो गोविंदा नमो नमः हो जाएगा और वो फिर पतन की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ बड़ा सुंदर उन्होंने प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत सुंदर तात्पर्य में कहा है कि मनुष्य घर को छोड़कर, यानी पहले वो अर्थ में बता रहे हैं याति कि अतएव अब मैं इन सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा और भगवान का ध्यान करूंगा, मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। और ये सब सुना रहे हैं अपनी पत्नी देवयानी को ही, एक बकरे का उदाहरण देकर के उन्होंने सुनाया था। अब बोले अब मैं वन में जाकर के बस तपस्या करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, उनका भजन करूंगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जंगल जाकर पशुओं के साथ रहना और भगवान का ध्यान करना ही काम वासनाओं को त्यागने का एकमात्र उपाय है। ये 9:19:19 श्लोक का है, 9:19:19। जंगल जाकर पशुओं के साथ रहना और भगवान का ध्यान करना ही काम वासनाओं को त्यागने का एकमात्र उपाय है। कहते हैं जब तक मनुष्य इन कामेच्छाओं को त्याग नहीं देता तब तक उसका मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो सकता। यदि कोई जन्म मरण जरा तथा व्याधि के बंधन से छूटना चाहता है तो उसे निश्चित आयु के बाद, फिर पप्पा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस बंधन से इस दुख से छूटना चाहता है तो उसे निश्चित आयु के बाद, निश्चित आयु कौन सी बताई हमने, 50 वर्ष के बाद, है ना, गिनती भी कहती है 50, तब तक खूब आस, खूब कमर तोड़ मेहनत करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सो उनको व्यवसाय से लगाओ, 50 तब तक आस और 51 तो चल वन, गिनती करिए 51, 52, 53, 54, है ना, गिनती 50 के बाद बनी लग गया उसमें। तो कहते हैं निश्चित समय के बाद जंगल को चले जाना चाहिए, 50 ऊर्ध्वं वनम व्रजेत, 50 वर्ष के बाद मनुष्य को स्वेच्छा से पारिवारिक जीवन छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ जंगल क्या है, सर्वश्रेष्ठ वन श्री वृंदावन धाम की। शिल्प जी कहते हैं कि 50 वर्ष के बाद उसे घर त्याग कर वन में जाना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए और सबसे श्रेष्ठ जंगल है वृंदावन। क्या विशेषता है वृंदावन की, तो भागवत में वर्णन है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनान च वीक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधवयो नपः। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम गोकुल से वृंदावन आए तो यहां वृंदावन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन को देख करके वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनान च, जब वृंदावन को देखा और उसमें गिरिराज पर्वत कल कल बहती यमुना, जब ये सब देखा कृष्ण बलराम ने बड़े प्रसन्न हुए। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जंगल सर्वश्रेष्ठ जंगल वृंदावन है, जहां उसे पशुओं के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन किसके साथ रहने की आवश्यकता है, तो ले वृंदावन भगवान के साथ रह सकता है, क्योंकि यहां वृंदावन में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। वृंदावनम प्रत्यज्य पादेकम न गच्छति, भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं बाहर जाते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसे पशुओं के साथ रहने की आवश्यकता नहीं, उसे भगवान के साथ रहना होगा यहां वृंदावन में। क्योंकि भगवान वृंदावन कभी छोड़ते नहीं,
वृंदावन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना, वृंदावन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना भव वंदन से छूटने का उपाय है। वृंदावन में भगवान की भक्ति करना ये भव वंदन से छूटने का उपाय है, इससे बढ़कर और कोई उपाय है नहीं। क्योंकि वृंदावन में मनुष्य स्वतः कृष्ण का ध्यान कर सकता है। वृंदावन में अनेक मंदिर हैं और उनमें से किसी न किसी में राधा कृष्ण है, कृष्ण बलराम है, तो इनके रूप में राधा कृष्ण के रूप में, कृष्ण बलराम के रूप में भगवान का दर्शन किया जा सकता है और इस रूप का ध्यान भी किया जा सकता है कि आज भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान ने आज कौन सी ड्रेस पहनी है, कैसे रंग की ड्रेस है। अच्छा, आज भगवान की कृष्ण बलराम की राधा श्याम ड्रेस कैसे रंग की है कौन बताएगा? पिंक कलर की, धन्यवाद। देखो माताएं बहुत ध्यान से दर्शन करती हैं। अच्छा, माताएं ध्यान से दर्शन क्यों करती जानते हो तुम? इसका कारण क्या है कौन बताएगा? इसलिए करती है, अधिकांश तो माताएं कुछ भगवान के लिए मालाएं बनाती हैं, कुछ पैरों की मालाएं बनाएंगी, कुछ हाथों की, कुछ ये बनाएंगी, तो ध्यान से देखती हमारी बनाई हुई माला भगवान को कैसी पहनाई है पुजारी ने, है ना? तो बड़ा आनंद आता है, गदगद होती है, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे हाथों से बनी हुई माला भगवान पहने हुए, वो धन्य हो जाती है माता है। और बड़े गौर से दर्शन करती कैसी ड्रेस है, कैसी माला है, अंतर कैसे सुंदर लग रहे हैं भगवान। तो भगवान के दर्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मय भावो अनुकीर्तनात्, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मय भावो अनुकीर्तनात् न तथा सम्यकर्षेण प्रत्यातत्वग्रहात्। भगवान ने कहा है कि मेरे प्रति जो प्रीति होती है, अधिक से अधिक प्रीति होती है, श्रवणात् मेरे बारे में सुना जाए, दर्शनात् मेरी सुंदर श्री विग्रह के दर्शन किए जाए, ध्यानात् और ध्यान किया जाए कैसी ड्रेस है, कैसी भगवान आभूषण पहने हैं, कैसी मुद्रा में खड़े हुए हैं। ध्यानात् भगवान के श्री विग्रह का ध्यान भी करें, श्रवणात् ध्यानात् दर्शनात् मय भावोन कीर्तनात्, और मेरे गुणों का कीर्तन, मेरे नाम का कीर्तन करने से, यानी इन इन इनसे इन क्रियाओं से इतनी मेरे प्रति प्रीति होती है, न तथा सम्यकर्षेण, उतनी प्रीति हमेशा मेरे साथ में रहने से नहीं होती। तहसील पप्पा जी कहते हैं कि वृंदावन में जो रह रहे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर के। श्री पप्पा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में और भगवान के इस धाम में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहा है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। क्योंकि भगवान में और भगवान के धाम में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। पर प्रभुपाद जी यहां बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर हमको सावधान भी कर रहे हैं। कहते हैं कि इस वृंदावन में व्यक्ति बड़े सौभाग्य से रहता है, क्योंकि वृंदावन की इच्छा तो, वृंदावन में रहने की इच्छा तो ब्रह्मा जी ने प्रकट की है। तद भूरि भाग्यम यह जन्म किमपि अटव्यम, यद गोकुल अपि कतमांग रजोभिषेकम। ब्रह्मा जी स्वयं ये इच्छा किया है कि तद भूरि भाग्यम, हे प्रभो मेरे सौभाग्य की बात यही होगी, सबसे बड़ा सौभाग्य यही होगा मेरा कि मैं इस ब्रज के किसी भी वन में मेरा जन्म हो या मेरे रहने का मुझे स्थान प्राप्त हो। और उद्धव जी ने तो यहां तक कि मनुष्य जीवन नहीं, क्या बनने की इच्छा की? लतापता बनने की इच्छा की। वृंदावनम किमपि गुल्म लतोषधि नाम, बोले वृंदावन में किमपि कहीं भी में, वृंदावन में गुल्म लतोषधि नाम, लता पत्ता कुछ भी बन जाओ, इससे क्या लाभ मिलेगा? इसमें ब्रज की रज उड़ के अपने आप ऊपर तो गिरती रहेगी, जिस रज के लिए देवता भी तरसते हैं वो रज स्वतः मिलती रहेगी। तो श्री रूपा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वृंदावन में रहता है, खाली रहना ही उसका, जो शुद्ध भाव से रहे, खाली वृंदावन रहना ही उसका परम लाभकारी है। और कोई रोज डेली भगवान की मंगला आरती में आए और संयम से नियम से रह करके भगवान की आराधना में श्रवण कीर्तन लगा रहे, तो वो तो निश्चित रूप से भगवर्धन से छूट ही जाएगा। परम प्रभुपाद जी सावधान करते हैं, कहते हैं कि वृंदावन में वो व्यक्ति शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वृंदावन शुद्ध हो जाते हैं, परंतु वो व्यक्ति शुद्ध नहीं हो पाता कौन, जो कामेच्छाओं से विचलित होता रहता है। वृंदावन में रह करके भी 50 वर्ष की अवस्था पूरी होगी, वृंदावन रह रहे हैं, पत्नी भी साथ में है और हमारी इच्छाएं बनी हुई हैं, कामेच्छाएं हम पूरी कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी सचेत कर रहे हैं ये सबसे बड़ा अपराध, ये साक्षात भगवान के चरणों में अपराध है, क्योंकि वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। और वृंदावन धाम में रह करके हम घर द्वार छोड़ के आ गए, पुत्रों को छोड़ के आ गए, सब कुछ छोड़ के आ गए, यहाँ हम रह रहे हैं, पत्नी के साथ रह रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों बहुत भारी अपराध कर रहे हैं। प्रभुपाद जी सचेत करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं यदि उसकी ऐसी कामेच्छाएं अभी बनी हुई हैं तो उसे वृंदावन को छोड़ देना चाहिए, जिससे भगवान के चरणों में कम से कम अपराध तो नहीं हो, क्योंकि वृंदावन एक ऐसा धाम है अति पवित्र करने वाला है। कोई व्यक्ति कितना ही पापी उससे पापी क्यों न हो और वृंदावन धाम में ठीक से रहता है तो सब पापों से छूट जाता है, और जो वृंदावन धाम में रह करके पाप करता है वो किसी भी तीर्थों में कहीं भी चला जाए वो कभी भी पवित्र नहीं हो पाता। इतना बड़ा ना, इतना महत्व वृंदावन का कि कितना बड़ा पापी कोई व्यक्ति हो और वृंदावन आ जाए, यहां ठीक से संयम नियम से रहे, भगवान की भजन श्रवण कीर्तन लगा रहे तो पापों से छूट जाता है, पवित्र हो जाता है। और वृंदावन में जो इंद्रिय तृप्ति करता है वो कहीं भी तीर्थों में कहीं भी चला जाए वो कभी पवित्र हो ही नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य है, आज का सारांश कथा यही है कि जितने भी दीपों का वर्णन हुआ है, 7 दीपों का, फिर 7 दीपों के अलग अलग 7-7 दीप ऐसे बनाए उनके पुत्रों ने, पर वो राजा भी सब दीपों को छोड़ छोड़ के वन में जंगल में जाके तपस्या करने के लिए गए। श्री प्रभुपाद जी कहते वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता है कि उन्हें घर छोड़ करके वन में समय पर वन में जाना ही चाहिए, वानप्रस्थ लेना ही चाहिए, और फिर वानप्रस्थ के बाद जब परिपक्व हो जाए तो संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए। बोले यही प्रगति के जीव के लक्षण हैं और प्रगति का यही उपाय है। तो मैं यही क्लास को बंद करता हूं, समय हो गया, किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कहना चाहे तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु। नहीं, वो बीच में छोड़ा नहीं बच्चों को, वैसे तो 50 वर्ष के बाद छोड़ना है, फिर भी यदि मान लीजिए आपके बच्चे समर्थ नहीं हुए हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए नहीं हुए हैं, विवाह शादी नहीं हुई है, तब तक आप उनकी जिम्मेवारी को पूरा कर सकते हो, करना भी चाहिए, क्योंकि ये ऋण है, ये हमारे पर ऋण होते हैं ना, पितृ ऋण, देव ऋण, जन ऋण, ये ऋषि ऋण, ये ऋण होते हैं, तो इन ऋणों से भी तो मुक्त होना है। ऋणों से मुक्त हुए नहीं और जा एक भाव में आकर के वन वानप्रस्थ ले लिया, वन में पहुंच गए, घर में थोड़ी सैकड़ों झंझट बने हुए तो फिर न इधर के रहे ना उधर के रहे, घर में सारी व्यवस्था ठीक करके और फिर आप वानप्रस्थ लो, निश्चित होकर वजन करो, कोई चिंता ही नहीं होगी फिर। अब बहुत से अधिकांश लोग ऐसे हैं कि सारी व्यवस्था ठीक है, घर में धन भी खूब है, बच्चे भी खूब कमा रहे हैं, खूब अच्छा सब लगे हुए हैं सारी, फिर भी उनकी आसक्ति नाती से बनी हुई है और कहते नहीं नहीं हमारी तो घर में सब अच्छा अनुकूल है, पत्नी हमारी भक्त है, हम भी भक्त हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं, पत्नी प्रचार कर रही है और सब ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई ये हमें शिक्षा कर्दम मुनि से लेनी चाहिए। कर्दम मुनि की पत्नी क्या कोई कम आज्ञाकारी थी, कम सुंदर थी क्या? कर्दम मुनि की पत्नी इतनी सुंदर थी देवभूति को, उसको देख करके गंधर्व भी आकाश से टपक पड़ा, नीचे गिर पड़ा उसकी सुंदरता को देख के, कितनी सुंदर थी वो। और पतिव्रता आज्ञाकारिणी, जब कर्दमुनि समाधिस्थ हो गए तो सेवा करती रही, वर्षों तक सेवा करती रही, इतनी पतिव्रता आज्ञाकारिणी, पर ऐसी पत्नी का भी त्याग किया। और घर में पुत्र कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान पुत्र बन के आए, साक्षात भगवान घर में पुत्र बन के आ गए, फिर भी घर को छोड़ा क्यों? बोले वैदिक सभ्यता है ये चारों आश्रम क्रमवाई जाना है, एक आश्रम ही रहना नहीं है, ये वैदिक सभ्यता है, शास्त्र कहते हैं, वेदों का वैदिक आदेश है ये। जब साक्षात कपिल भगवान घर में आ गए, देवहूति जैसी पत्नी और उनकी दामाद कैसे, मरीच अत्रि अंग्रेज इत्यादि ऐसे ऋषि भी उनके दामाद थे, उनकी लड़कियां भी कैसी थी, जिनके वंश से सारा विश्व भरा हुआ है, ऐसा बढ़िया परिवार छोड़ करके भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, उनसे कपिल भगवान से, प्रभु मुझे आज्ञा दो, अब मैं वन में जाकर के आपकी तपस्या करूंगा, घर में रह करके तपस्या नहीं बन पाएगी। तो भगवान का ठीक, गच्छ काम मया प्रस्तो संन्यस्तमय कर्मणा जित्वा सुदुर्ज मृत्युम अमृत्वाय माम भज। ठीक है जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके, और जित्वा सुदुर्ज मृत्युम, जो जिस मृत्यु को जितना बड़ा कठिन है, जन्म मृत्यु को जितना बहुत कठिन है, बोले उसे जीतो, जन्म मृत्यु चक्र से निकलने का प्रयास करो, उसी मानव जीवन की सफलता है, नहीं तो बार बार जन्म मृत्यु चक्र पड़े रहना ही, तो फिर पशु की तरह इसमें बार बार योनि में आते रहे। तो ठीक है आपका प्रश्न, जब तक घर में बच्चे सेटल नहीं हो तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी पूरी करने के बाद निकल सकते हैं, और जिनकी जिम्मेवारी पूरी हो गई है उनको निकलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।